नमो भगवते वासुदेवाय। वद्धो दधो रघुपतिर्विविधाद्रिकूटे सेतुं कपीन्द्रकरकम्पितभूरुहङ्गे सुग्रीवनीलहनुमत्प्रमुखैरनीके लङ्कां विभीषणदृशाविसद् अग्रदग्धाम् बद्धो दधो रघुपतिर्विविधाद्रिकूटे सेतुं कपीन्द्रकरकम्पितभूरुहङ्गे सुग्रीवनीलहनुमत्प्रमुखैरनीके लङ्कां विभीषणदृशा विशदग्रदग्धाम् शब्दार्थ बद्ध्वा बांधने के बाद उदधो समुद्र के जल में रघुपति भगवान रामचंद्र ने विविध आद्रिकूटे अनेक पर्वतों की चुटियां से सेतुम पुल कपिंद्र शक्तिशाली वानरों के करकंपित हाथों से हिलाए गए भ्रूह अंगे ही वृक्षों से सुग्रीव नील हनुमत प्रमुख सुग्रीव नील हनुमान इत्यादि अनेक है ऐसे अनेकों सैन्य सहित लंकाम रावण के राज्य लंका में विभीषण दृशा रावण के भाई विभीषण के निर्देशों से आविशत प्रवेश किया अग्रदग्धाम पहले ही हनुमान द्वारा जो चलाया गया था। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद सुखदेव गोस्वामी ने कहा जल में उन पर्वत श्रृंगों को फेंक कर जिनके सारे वृक्ष बंदरों द्वारा हाथ में हिलाए गए थे समुद्र के ऊपर पुल बना चुकने के बाद भगवान रामचंद्र सीता देवी को रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए लंका गए। रावण के भाई विभीषण की सहायता से भगवान सुग्रीव नील हनुमान इत्यादि वानर सैनिकों के साथ रावण के राज्य लंका में प्रविष्ट हुए जिसे हनुमान ने पहले ही भस्म कर दिया था। अनुवाद तात्पर्य बंदर सैनिकों ने वृक्षों से ढके बड़े बड़े पर्वत श्रृंगों को लाकर समुद्र में फेंका जो ईश्वर की परम इच्छा से तैरने लगे। भगवान की इच्छा से ही आकाश में अनेक बड़े बड़े ग्रह रुई के फाहों के समान भारहीन बनकर तैरते हैं तो फिर महान पर्वत श्रृंगों को जल में तैरने में कौन सी कठिनाई होगी। यह भगवान की सर्वशक्तिमत्ता है, वे जो भी चाहें कर सकते हैं क्योंकि वे भौतिक प्रकृति के अधीन नहीं है, प्रत्युत प्रकृति ही उनके वश में है। मयाधक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम, मेरे ही निर्देश अनुसार प्रकृति कार्य करती है। ब्रह्म संहिता में भी ऐसे ही जानकारी प्राप्त है। यस्य ज्ञाया भ्रमति समृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि प्रकृति की कार्यशैली का वर्णन करते हुए ब्रह्म संहिता कहती है कि सूर्य भगवान की इच्छा से घूमता है, अतः भगवान रामचंद्र के लिए हिंद महासागर के ऊपर उन बंदर सैनिकों की सहायता से जो बड़े बड़े पर्वत श्रृंग को लाकर जल में फेंक रहे थे पुल बनाना तनिक भी आश्चर्यजनक नहीं है। यह केवल इसलिए अद्भुत लगता है क्योंकि इस भगवान रामचंद्र के नाम तथा जस को अमरत्व प्रदान किया है। हरे कृष्ण। अभी भगवान राम की जन्मोत्सव आने वाला ही है, शायद इसीलिए या आपके इसे नेचुरल आप लोग से राम भक्त तो नहीं नेचुरली भगवान राम के लीला के वर्णन ऐसे कई मंदिरों में तो शुरुआत करते ही हैं। आज से मैंने सुना कि दिल्ली मंदिर में सप्ताहव्यापी राम कथा के आयोजन किया जा रहा है, तो आप लोग का तो सप्ताह महीना व्यापी चली जाए तो आज के जो श्लोक है, आप कई दिन से रामलीला सुन रहे हैं, लगभग आज 16 दिन हो गया, हाँ 16 उपचार कर चुके हैं। अब आज ही 16 श्लोक में सुखदेव गोस्वामी ने कहते हैं, ये जो कहते हैं ये श्लोक से वर्णन से पता चलता है कि अभी तक 4 कांड 5 कांड की वर्णना कर चुके हैं लगभग। रामायण में 7 कांड होता ना, बाल कांड अयोध्या कांड अलग नहीं है ना, एक ही है, अलग अलग बाल कांड अयोध्या कांड फिर अरण्य कांड फिर किष्किंधा कांड फिर सुंदर कांड फिर लंका कांड अयोध्या कांड बाद में उत्तरकांड है ना। तो इसमें से पता चलता है किष्किंधा कांड हो चुका है, सुंदर कांड भी हो चुका है, अभी लंका कांड का पहली चरण की वर्णन है। लंका कांड या युद्ध कांड अलग अलग किताबें अलग नाम दिया गया, जो लंका कांड या युद्ध कांड का प्रथम वर्णन है, क्योंकि सुंदर कांड में हनुमत लीला है, ये हनुमान जी का लीला हो चुका है, सुग्रीव का साथ बंधुत्व हो चुका है, और यहाँ तक कि ब्रिज बनाने का काम यहाँ आया, तो ब्रिज बनने यद्यपि लंका कांड के पहले ही है और सुंदरकांड के अंतिम भाग की है, सुंदरकांड में लंका जलन हो गया, लंका दहन हो करके आए, जब रिपोर्ट मिला भगवान को सीता जी के अन्वेषण के बाद, सीता अन्वेषण तो सुंदरकांड का ही है, किष्किंधा और सुंदरकांड के अंदर सुंदरकांड में गए और रावण जो गए ना हनुमान जो गए लंका वो सुंदरकांड के अंतर्गत है और लंका दहन आदि, तो आ करके हनुमान रावण के पास अपने रिपोर्ट दिए, राम के पास रिपोर्ट दी, भगवान राम ने उनसे संदेश पा करके अब सीता जी को रावण से छुड़ाकर लाने के लिए शुरू कर दिए अपने मोर्चा और समस्त वानर सैनिकों को लेकर के और दक्षिण दिशा में यात्रा करते हुए जा करके समुद्र किनारे पहुंच चुके हैं और समुद्र में देखे कि समुद्र पार करके कैसे जाए, हनुमान सभी नहीं है कि उड़ करके चले जाए जंप करके, इतने बड़े करोड़ों संख्या में सैनिक अब लेकर के जाएं, तो अंततः विभीषण भी आ चुका था तब तक, विभीषण भी बोला कि समुद्र से सलाह किया जाए, तो भगवान राम से समुद्र में पार करने के लिए प्लान प्रस्तुत किए, तो लेकिन वो समुद्र प्लान पास नहीं कर रहा था, कोई काम के लिए डीडीए से नक्शा पास कराना पड़ता ना, तो एसडीए समुद्र डेवलपमेंट अथॉरिटी से नक्शा पास कराना था, लेकिन वो नक्शा पास नहीं कर रहा था, ये बदमाशी उनका भी था हमेशा ही, तो भगवान ने धमकी दी, आपने देखा है जो रूप देखा है तो डर के मारे पास कर दिया चलो चलेगा ऐसा नक्शा पास किया है कि विदाउट पिलार ब्रिज विदाउट पिलार, यस पिलार जरूरत नहीं, बोले आप जाइए, बोले आप तो ऐसे ही जा सकते हैं लेकिन एक कुछ रख कर जाइए संत कि काम नाम ताम का रहेगा, तो इसी को यहाँ कहते हैं भगवान के केवल जस को बढ़ाने के लिए भगवान ने ये सेतु निर्माण की, नहीं तो वो तो ऐसे ही चला जा सकते, समुद्र सूख जाता उनके लिए तो डर गया था इतना, तो सेतु निर्माण के पहले श्लोक के पहले लाइन में सेतु कैसे निर्माण हुआ बताते हैं, बद्धवा बांध डाले समुद्र को, ब्रिज बना लिए पूरे समुद्र को आर पार, कैसे उदधो बद्धवा उदधो, उदधि मतलब समुद्र को ऊपर
बांध बना ले, ब्रिज बना लिए, आजकल कोई छोटा सा कलवट डालने के लिए, कलवट समझते ना, एक नाला के ऊपर ब्रिज डालने के लिए तो कम से कम इंजीनियर आर्किटेक्ट जो पहाड़ तो नहीं, पहाड़ के छोटा सा टुकड़ा पत्थर, पत्थर को पीट पीट करके चिप्स बनाते हैं टुकड़ा टुकड़ा करके, फिर उसे सीमेंट आदि मिलाकर फिर कलवट डालते हैं। और यहाँ वर्णन किया गया आद्रिकोटई, बोले चिप्स कौन करता है, क्रशन मशीन था नहीं, सीधा पर्वत को उखाड़े। अरे भैया कोई भी काम करो पर्वत को तोड़ कर करना पड़ेगा, अगर घर बनाओ कुछ बनाओ मेजिया के लिए तो पर्वत काम नहीं लगेगा, लेकिन ये कोई घर पर बनाना काम, समुद्र के ऊपर ब्रिज बनाना। तो उनके पास आर्किटेक्ट और कंट्रैक्टर तो थे नहीं, सारे बंदर थे, बानर के साथ में बानर को लेकर काम करे, उनको कौन सा भाई साइज देखना है, ये करना है ये सो करना है, वो तो सीधा आ गए और पर्वत को उखाड़े। पर्वत के ऊपर भाई पेड़ पौधे लते पते है वो भी छील छाल कर नहीं लाए। अरे भाई पर्वत को ला करके तोड़ ताड़ करके साइज कर, उन्हें ये साइज का चिप्स चाहिए, नहीं ये साइज का चिप्स होने से काम ठीक होगा। बोले साइज भाई जी मारो, बोली सीधा पर्वत उठाओ विथ पेड़ पौधे, पेड़ पौधे के साथ हिला हिला कर उठे रहे, वो पेड़ पौधे से हिल हाल गए थे, वो लाकर सीधा दुम डाल दिए समुद्र में। लेकिन अद्भुत है ये कि वो सारे वानर भी भगवत शरणागत हो चुके थे, भगवत प्रत्यार्थ पर्वत समेत वृक्ष समेत पहाड़ को उठाकर डाले तो वो भी चीप सी फेल मार जाए, ऐसे स्ट्रांग ब्रिज बन गया, करोड़ों सैनिक उसके ऊपर चल कर गए, कुछ फर्क नहीं पड़ा, ऐसे वो तैरने लगा, विशाल विशाल पर्वत पेड़ सहित तैरने लगे। प्रभुपाद जी ने तैरते में देखते हैं ये कोई बड़ी बात नहीं है, भगवान को तैराने के लिए फॉर्मूला चेंज, जैसे हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूला, जैसे आप कोई पत्थर ऊपर को फेंको ऊपर जाएगा, आप कितने पावर से फेंको आपका पावर जितना तक गया फिर वहां से नीचे आएगा, कोई भी नीचे ही आएगा पता नहीं। तो ये भगवान के नियम है कि नीचे क्यों आएगा, लेकिन भगवान चाहे तो नियम को एडिटिंग कर सकते हैं, आप नीचे ही फेंको ऊपर ही जाएगा, उनको चेंज करने को टाइम लगता है, एडिट कर देंगे उसके, वो नियम बनाए कि आग के लो ऊपर की ओर जाएगा पानी की धारा, ये उनके नियम बनाए, वो चाहे तो एडिट कर सकते हैं उसको, पानी की धारा ऊपर की ओर जाएगा आग की लो नीचे की ओर, वो भी कर सकते हैं, उनके लिए कौन सा थोड़ा कलम चलाना है और क्या, एडिट कर दे हो जाए। तो इसीलिए वो इतने विशाल विशाल ग्रह तारका जो ऐसे ही टांगे नहीं कुछ नहीं ऐसे शून्य में तैरा रहे हैं, तो एक दो पहाड़ पर्वत को तैराने में कौन सा बड़ी बात है पानी के ऊपर। तो इसलिए भगवान के लिए कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। आप बोले भगवान थोड़ी, भगवान तो बैठे थे बड़े बड़े बंदर भालू, ये बंदर भालू आपने लिए थोड़ी कर रहे थे, उनके लिए कर रहे थे, उन्हीं के तत्वावधान, जिन्हीं के निर्देश, जिन्हीं के निर्देशन में साक्षात प्रकृति ही काम करा रहा है, वो बैठ कर देख रहे हैं, उनके सामने पर्वत तैरेगा नहीं, वो तो पानी में न डालकर ऊपर से तैरता होता उनकी इच्छा हो तो उनके इच्छा से वृक्ष समेत जिसको हिला हिला करके बड़े बड़े बंदरों ने, वो जेसीबी फेल मार जाएगा। आजकल हम महाबली इसको मानते ना, जेसीबी बोलते ना उसको जेसीबी, लेकिन ये जेसीबी 200-500 जेसीबी एक एक बंदर का, जैसे एक एक बानर की शक्ति होता था इतने जेसीबियों की, तो उठा कर पर्वत को उखाड़ कर ले आते। हम तो देखे हैं कई, कम से कम 20 साल से हम देख रहा हूँ एक एक पर्वत में लगे हैं बोल्डर तोड़ तोड़ करके काम में लाने के लिए, 20 सालों से पर्वत का एक टुकड़ा तक भी नहीं कर पाए, 20 सालों तक लगे हैं, कई जेसीबी लगे हैं, कई ट्रक लगे हैं, दिन रात उखाड़ रहे हैं उसे तोड़ रहे हैं, अभी तक पर्वत को कुछ नहीं फर्क पड़ा इधर तोड़, और वो सीधा गए तत्क्षणात सीधा पर्वत को उठा के डाल दिया खत्म। और कौन सा ट्रक चाहिए, लोड करना चाहिए, इतने लेबर चाहिए, जैसे कुछ नहीं चाहिए, ये भागवत शक्ति। और इसमें कहा गया अनेक मतलब सैनिक, भगवान राम ने रावण के साथ लड़ाई करने के लिए लंका में, लंका को गए, समुद्र में बांध बनाए, किस लिए, युद्ध करना था किसके साथ, रावण के साथ। रावण को पता है तभी जमाने में रावण पूरे वर्ल्ड नहीं पूरे ब्रह्मांड के नंबर वन जो शक्तिशाली राजा था, नंबर वन था, उनके पास जो वेपन था सारे हाईटेक अप टू डेट, दिव्यास्त्र तो था ही, उसके अलावा उनके जो सैनिक थे राक्षस राज शुभम विविध प्रकार के रूप बदल सकते थे, विविध प्रकार के योग शक्ति उन्मित थे, बहुत प्रकार के, और ऐसे ऐसे मेजिकल इंस्ट्रूमेंट रखे थे और प्रहस्त और इंद्रजीत आदि, तो ऐसे ऐसे सिद्धियां उनके पास था जो कोई सोचा भी नहीं जा सकता। इतने इतने महान शक्तिधर, सिद्ध शक्ति और दिव्य शक्ति अस्त्र सब लेकर के, और उनका जो आर्मी थे वो पूरे ब्रह्मांड में सबसे वेल ट्रेंड डिसिप्लिन विथ आर्म्ड फोर्स थे, उनके समान कोई हो नहीं सकता था। और उनके अपुलेंस तो इतने, उनके पास धन था, वो तो एक स्टेयरकेस बनाता था अर्थली प्लैनेट से हेवनली प्लैनेट तक, वो काम शुरू कर दिया था, यस बना शुरू कर दिया था उन्होंने। और वो बोल रहा था बना करके, बोला मैं भी एडिटिंग करूंगा ये नेचर में, क्या बोले जितने से पुण्य करते हैं सब स्वर्ग जाते हैं, बोले से पुण्य वाले सब नरक में जाएंगे और जो पाप करते हैं राखे सब स्वर्ग में जाएंगे, और उनका रास्ता ना हमारा अपना रास्ता में जाएंगे, मैं स्टेयरकेस बनाऊंगा चढ़ के जाएंगे देखते हैं क्या करते हैं। और इंद्र को तो पीट पाट कर भगा दिया था, बोला वो अपना प्लानिंग में लगा था। लेकिन इससे बड़े महाशक्तिशाली संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ योद्धा, सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र सैनिक सब कुछ था उनके पास में, और उनके विरोध में लड़ाई करने के लिए भगवान कोई नहीं, दो भाई हैं और जो उनके सैन्य शक्ति है कोई वेल ट्रेंड नहीं, अरे मनुष्य नहीं तो बंदर ही थे सारे, कोई पहले से एनडीए कैंप अटेंड किए थे ना, थे कोई पुणे जाकर 3 साल का कोर्स नहीं किए थे पुणे में ना नेशनल डिफेंस एकेडमी कोई कोर्स नहीं किए थे, यारे कहां तक तो कोर्स के बाद कहें बंदूक की धनुष बाण पकड़ना नहीं आता, उनके हाथ पर है नहीं सब चलाना है पकड़ना है? कोई प्रकार ट्रेनिंग नहीं, ना देखे नहीं अस्त्र शस्त्र, ना कोई पहले लड़ाई किए थे, आपस में लड़ झगड़ कर रहे थे बस, एक बड़े विशाल सेना के साथ कभी वेल ट्रेंड होकर कुछ नहीं किए थे। एक तो सैन्य, और वो सैन्य भी थे, उनका यूनिफॉर्म भी नहीं था सब नंगे धड़ थे कोई यूनिफॉर्म नहीं कुछ नहीं, और वेपन्स अस्त्र शस्त्र के बात ही क्या, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं, सीधा पत्थर उठाए पेड़ उखाड़े यही उनका अस्त्र है और क्या। मतलब ये देखा जाए भगवान सबसे विश्व के प्रसिद्ध योद्धा के साथ जो सभी प्रकार से शक्ति सरंजाम से समन्वित था, उनके साथ लड़ने गए एक इतने बड़े आर्मी लेकर के जो जीरो एक्सपेंस था। आजकल तो कोई भी कंट्री लीजिए, ये आर्मी एक्सपेंस मोर देन 50%। प्रतिरक्षा का पूछो, हमारे देश की जो वार्षिक आय होता है उससे 50% से ज्यादा केवल उन्हीं लोगों की खर्चा होता है, और लड़ाई तो आजकल होता ही नहीं तो मजा से रहते हैं और क्या लेकिन भगवान रामचंद्र के आर्मी ऐसा थे, एक नया पैसा खर्च नहीं था भाई, अकोमोडेशन जंगल वाले हैं, नो फ्लैट नो रेसिडेंस, कोई अकोमोडेशन कंटेनमेंट कोई जरूरत नहीं, काहे को पैसा खर्चा करें कंटेनमेंट, इतने जगह घेर कर बैठेंगे शहर में, कोई कंटेनमेंट था नहीं उनके रहने के लिए, एक भी घर फ्लैट कुछ नहीं था, कोठी फोटी कुछ नहीं था। और भाई ड्रेस, आर्मी को ड्रेस बड़े टोपी है, बोले ड्रेस सारे नंगे रहने वाले, एक भी टेलर जरूरत नहीं, कपड़ा आधा मीटर भी जरूरत नहीं, कुछ खर्चा नहीं ड्रेस के लिए, अकोमोडेशन नहीं कि ड्रेस भी नहीं, खाने पीने के लिए किचन का जरूरत नहीं, मेस का जरूरत नहीं, ऑफिसर्स मेस कुछ नहीं, सीधा छोड़ दो जंगल में जाकर तोड़ दाड़ कर खा पी कर आ जाएंगे अपना सेल्फ फूडिंग कोई खर्चा नहीं किसी प्रकार से। अरे उनके कमांड करने के लिए भी कुछ जरूरत नहीं, किसी को कमांड करे, बंदरों को कमांड करने के लिए चाहिए क्या उनको क्या कमांड करे कोई ऑफिसर की जरूरत नहीं, कोई कमांडर की जरूरत नहीं, कोई धन शक्ति खर्चा वर्चा जीरो एक्सपेंस कंप्लीट, उन्हीं लोग को लेकर के गए लड़ने के लिए। और भाई अस्त्र शस्त्र भी कुछ भी नहीं, उसके लिए भी खर्चा नहीं, कोई खर्चा खर्चा अस्त्र शस्त्र के नहीं, कोई आणविक अस्त्र ये कमांड उखाण कुछ नहीं, सीधा जहां से पत्थर उखाड़ेंगे पेड़ उखाड़ेंगे वही उनका अस्त्र है, दांत दिखाएंगे वो पेड़ फेंकेंगे पत्थर फेंकेंगे बस दैट्स इट। अरे इतने बड़े महाशक्ति, इतने बड़े सुसज्जित, जो विश्व में सबसे बड़ा जो शक्तिशाली योद्धा, उनके सामने इनको लेकर जाएंगे वानर को लेकर लड़ेंगे। लेकिन चाहे कितने बड़े शक्तिशाली क्यों ना हो, अगर कोई भगवत शरणागत हो जाए, ये सामान्य अनट्रेंड शास्त्र विहीन वानर भी ये सर्वश्रेष्ठ ट्रेंड अप और वेल इक्विप्ड जुद्धा को ऐसे ही मार गिराएंगे। मार क्या गिराएंगे, ये श्लोक के लास्ट लाइन में बोलते हैं, अरे इतना क्या सोच लो, भगवान ने सोचे मैं लड़ाई करूंगा, एडवांस जला दिया गया वो जाने से पहले, अग्रे दग्धा, बोले पहले जला दिया, लास्ट में अग्रे दग्धा, बोले भगवान ने सोचे मैं जाऊंगा लंका, चढ़ाव करूंगा लंका, लड़ाई करेगा, भगवान लड़ाई करेंगे जो मन में विचार किए वो आग लग गया उसमें। हाँ बताओ, वो उन्हीं की प्लानिंग था, हनुमान जी जलाना नहीं चाह रहे थे, उन हनुमान जी की पूछ में आग लगा दी, आग लगा दी, बंदर तो कूदेगा, वो कूदेगा तो आग पकड़ लिया उनके क्या दोष है, अगर उनको कोर्ट में लेकर जाए कोर्ट अपला में, क्यों आप जला दिया, मैं जला दिया, मैं आग लगा था, मैं कहाँ से आग लगा, माचिस नहीं लगा सकता मैं। आप लोग ने पूरे लंका से जितने कपड़ा 2-5 ट्रक ला करके लोड किए, मैं कपड़ा कहाँ से मांगा था, कपड़ा आप लोग ला रहे, पता नहीं कितने गैसोलीन पेट्रोल पंप ला करके पेट्रोल डाले, और आग आप ही लोग लगाए, और देखना चाह रहे थे, देखे बंदर की पूछ में आग लगा करके इसे नाचता है, और मैं नाचा, मैं नाचा, आग का धर्म, आग पकड़ लिया मैं क्या करूं, आपके सिटी तो फायर प्रूफ था नहीं, मैं क्या करूं, अब मैं फायर प्रूफ था, ये बात आपको पता नहीं, आई वाज टोटली फायर प्रूफ, आपका सिटी फायर प्रूफ था नहीं, और आप ला करके, मतलब मैं अगर लंका जलाने के प्लान भी करता, बोले भगवान राम की क्या विचार, एक वो बोला दिया कि बंदर ने आग जला देगा, लंका आग जला देगा, मैं जब हनुमान जी सुने थे पहले भविष्यवाणी, सीता जी के जो होता तभी बोले थे, हनुमान सोचे मैं कैसे जलाऊंगा, इतने विशाल सिटी है उसको कैसे जलाऊंगा, कहां से लाऊंगा ईंधन, कहां से लाऊंगा कपड़ा रहता, आग कहां से लाऊंगा, ये तो मेरे लिए नया है, मैं रात रात आया हूं तो पता ही नहीं कौन से घर किधर है क्या है, कैसे जलाऊंगा, बोलते झूठा संभव नहीं है, लेकिन भगवान राम की इच्छा था, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, वही लोग करेंगे सब, वही लोग सारे पूरा कॉन्ट्रैक्ट दे करके कई ट्रक लोड कपड़ा लाए, कई पेट्रोल पंप से सारे खाली करके डीजल फीजल पेट्रोल फेट्रोल सब लाए, आग लाए, वही लोग पकड़े, सब वही लोग करा, ये भगवत इच्छा, भगवान इच्छा के मैं लड़ूंगा, अब पहले से उनको झटका दो, पहले भी जला देता हूं, हनुमान जाकर के प्लानिंग ऐसे जला दिए, जलने के अग्र दग्धा, पहले से जलाया जा चुका था बंदर के द्वारा, अभी भगवान पहुंचे, पहुंचे तो समुद्र के ऊपर बांध बनाकर पहुंचे, रावण तो सोच रहा था मेरे पास को आ ही नहीं सकता, मेरा बाउंड्री वाल तो साक्षात समुद्र है, कौन आ सके, कौन आ सके समुद्र के, लेकिन ये जो दूत बनकर के गया ढूंढने वाला, हनुमान वो जंप लगा कर चला गया समुद्र, जंप करके समुद्र कूद करके चला गया, जा करके ये कांड करके आ गया, जला जली करके और जंप करके आ गया, अभी तो बाई रोड जा रहे हैं, वो तो भाई एयर गए थे हनुमान जी ने, अभी बाई रोड गए, अब भाई रोड जा करके अब पहुंचेंगे लंका में, क्या करेंगे वो कल का श्लोक में बताएंगे, आज का श्लोक में बताते हैं कि समुद्र के ऊपर ऐसे बांध किए, बड़े बड़े पर्वत को उखाड़ उखाड़ करके और सेतु निर्माण करके, उसमें कौन कौन थे मुख्य लोग, न सुग्रीव नील हनुमत प्रमुख है, सुग्रीव वानरों के राजा थे, नील ऐसे आप लोग पढ़ेंगे वानर, वो इंजीनियरिंग चीफ था, वो उनका पास से इंजीनियरिंग पावर आया कहां से, भगवान ने दिए, भगवान चाहे तो मुकं करो थी वाचालं पंगुलंग है तगिर, किसी को जाए कर सकते हैं, उनकी कौन सा बड़ी बात है, एक बंदर को भी हाईटेक इंजीनियर बना दिए, ये दुनिया में कोई अब तक सोच ही नहीं सकते, बिना पिलार में ये कैसे समुद्र के अंदर ब्रिज बन गया भाई, आपको पता है समुद्र के अंदर वो ब्रिज के लेंथ था, ब्रेड था 80 माइल, लेंथ था 1200 माइल, इतने बड़े लंबा चौड़ा ब्रिज कितने दिन में बना था, आप अगर कलवट बनाने के लिए तो कई महीना लग जाएगा, कंट्रैक्टर जी है नहीं, नहीं आए नहीं कंट्रैक्टर साहब रोड बनाने वाले, वो भी करते हैं, वो भी कैसे तोड़ताड़ जाता, लेकिन वो ब्रिज बनाए थे कोई इंजीनियर कंट्रैक्टर जेसीबी मशीन कुछ नहीं लगा था, 5 दिन में 80 माइल चौड़ा और 1200 माइल लंबा ब्रिज बना दिए, ओनली इन 5 डेज, केवल 5 दिन में बना था, 5 दिन में बना करके 7वां दिन में तो वीकेंड में पहुंच चुके थे सारे सैनिक, सारे पहुंच गए थे, रावण के सीआईडी और उनके लोग सब देखते थे, वो तो सोच रहे थे पागल है, समुद्र के ऊपर बांध बनाएंगे। अरे बांध बना करके बोले ये पागल है दुर्विचारी, क्या मरेंगे समुद्र के ऊपर, कैसे पुल बना कर आएंगे। ये सोच हंस रहे थे, हंस खत्म होते देखा कि ब्रिज बन चुका है। अरे ब्रिज बन गया, मैसेज ब्रिज बन चुका, बन चुके ब्रिज, हम बन चुका, इतनी बड़ी शक्तिशाली ब्रिज बना है। उनके ऊपर वानर लोग तो नाच कूद करके चिल्लाते चिल्लाते दौड़े, उनको कौन सा डर है। ऐसे हा हल्ला करके के गए बंदर लोग, तो उनको ऐसे है नहीं डिसिप्लिन मेंटेन करे, उनका हिसाब से वो जा रहे तोड़ ताड़ जाके पहुंचे। जैसे पहुंचे लंका में, सबसे पहले बार सबको फिस्ट खाना था, पहुंच गए तो फिस्ट खाने के लिए कौन सा कुकिंग करना था, मेनू वेनू करना था। सीधा भगवान ने बोले चलो रिलीज कर दे, जाओ जहाँ है सब जंगल सब जाकर खा जाओ। और ये जो उनको ऑर्डर पास कर दिए, गए सब लूट पाट करके, इसे तोड़ मरोड़ करके खाए। जब हम मनुष्य को तोड़ने जाते हैं, हमको चार फल चाहिए, आठ दस तोड़ लेते हैं, फेंक देते मेरे खाते। वानर तो हमसे और बढ़ करके, वो तो सीधा पेड़ तोड़ेंगे फल तो तो इसी प्रकार लूट पाट करके उनके ओपनिंग फिस्ट हुआ। कोई कुछ नहीं जल देना पड़ता, कुछ नहीं था, वो अपने हिसाब से अपना फिस्ट फास्ट करके आ गए। वो आ करके जो आगे श्लोक में वर्णन सुने, कैसे शुरुआत की लंका कांड का, युद्ध कांड का, तो उसमें भगवान राम के शरणागत होना, ये श्लोक में सुखदेव गोस्वामी ये श्लोक में ये हमको शिक्षा देते हैं कि अगर भगवान के साथ हम जुड़ जाए, भगवान के लिए काम करने के लिए लग जाए, तो कुछ आश्चर्य हमको महसूस नहीं होगा। जो दुनिया के लिए सर्वश्रेष्ठ आश्चर्य अति सहज हो जाएगा, अति सहज हो जाएगा। अभी तक लोग सोच सोच कर पागल हो जाएंगे, कैसे ऐसे हुआ, ये हुआ हो गया, कैसे हुआ, कोई कारण नहीं, एकमात्र श्री राम शरणम, भगवान राम के परम इच्छा के अधीन हो गए और उनके लिए हो गए। ये बानर भालू भी ये वेल ट्रेंड सोल्जर के ऊपर हो, समुद्र के ऊपर भी बांध बन गया, लंका भी, कुछ भी संभव हो सकता है, कुछ भी संभव हो सकता है अगर हम भगवान के शरण में जाकर गए। और भगवान के शरण छोड़ करके रावण की ओर से देखो, थोड़ा उनके ओर से देखो भाई क्या हो। अगर रावण की तरह रहा, भगवान की शरणागति छोड़ करके सारे ब्रह्मांड में सबसे हाईटेक वेपन्स, वेल ट्रेंड सोल्जर और जितने जितने सब टेक्नोलॉजी जो जो हो सके संभव सारे एकत्र कर लो, कोई काम के भेड़ बकरी की तरह भी नहीं, कुछ भी नहीं। देखते देखते दो तीन महीना में सारे हताश खत्म, और उनको मारे एक बंदर लोग ने पत्थर फेंक कर मार डाले, बताओ हाँ, कोई लाठी भट्टी मारते वो भी नहीं है, लाठी भी नहीं चलाए, सारे पत्थर फेंक फेंक करके दांत में काट कूट करके मार दिए उनको। और बंदर लोग करेंगे क्या, दांत दिखाएंगे जाके काट खाएंगे, यही तो करेंगे। उनके पास कितना हाई पावर मिसाइल था, लेकिन यो दांत दिखा देखा तो काट खा गए उसको जाकर, कुछ नहीं मिला। युद्ध कांड में वर्णन आता है हनुमान सुग्रीव कभी कभी दौड़ जाते, देखते थे रावण बेटा, सुग्रीव तो एक बार देख लिया, इतना गुस्सा था, बोला मेरे मित्र मेरे प्रभु राम के यही शत्रु है, भगवान के बिना परमिशन लिए कूद पड़ा। वो जो पीक में बैठे थे, वो पीक से देख लिया, विभीषण ने दिखा रहा था, बोला ये देखिए यही राक्षस राज राम, ओ दिस इज, अरे अरे पूछो तो कुछ पता, तुरंत कूद पड़ा। बानर है उनका तो रजोगुण तमोगुण भरा हुआ था और उनका अंदर बल था ही, तुरंत जंप किया, भगवान बैठ देख रही है क्या कर रहा है यार। अरे भाई कुछ तो विचार करो, चल गया भीषण, बोलता है सर देखिए तो हमें क्या करूं, बंदर ही क्या, उसे कौन से डिसिप्लिन किया जा सकता है, वो बंदर के लीडर था, राजा था सुग्रीव, वो भी इसे किया, सबसे पहले ओपनिंग में गड़बड़ किया, बिना पूछे लड़ाई का शुरू नहीं, सीटी नहीं बजा, कुछ नहीं हुआ भाई, कुछ है कोई फॉर्मेलिटीज है, विभीषण बता रहा है खाली, जस्ट नोटिफिकेशन ऐसे ऐसे है, वो बैठ के उंदर से देख रहे हैं, बैठ के देख रहे हैं, आप देखते देखते जंप मारा, जा करके पकड़ लिया रावण को। सुग्रीव जाकर पकड़ लिया और जाके झुंझा, रावण रेडी नहीं था, ये क्या बता दे। रावण थोड़ी विश्वास किया था, हटा ताटा कर लेकर दौड़ पड़ गया, ये वानर है उनको कौन सा। ट्रेनिंग फिर के क्या पता वो नियम कानून क्या पता, सीधा भिड़ गया जाकर खींच लिया उनको। सारे उनके मंत्री संत्री बोली ये कैसे आ गया यार, लड़ाई शुरू नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ, पकड़ कर दोनों भिड़ गए। तो रावण था महाशक्तिशाली, लड़े खूब लड़े, हाँ शाम तक लड़ करके उनको ही परेशान कर दिया, और खुद परेशान होकर, रावण तो महाशक्तिशाली था, देखा कोई हमें फिर चंपन को वापस आ गया। बोला रावण देखता ये तो पानी पिला दिया अभी। बोला एक तो लड़ाई का सोच रहा था तभी आग लगा दिया एक आकर के बंदर, और दूसरा अभी हम देख सन्य निरीक्षण हो रहा था वह आकर के मेरा पानी पिला दिया। पकड़ के पिटपाट कर गया मुझे ही सीधा ओपनिंग में। तो इसे वानर सर क्या लड़े, कौन सा किनारे, इधर से उधर से कोई नीति काम नहीं करे, कोई रणनीति उनके लिए लागू नहीं होके रण थोड़ी के रणनीति करेंगे, कौन सा ऐसा करके करके कोई नीति नहीं, कोई नियम नहीं, कुछ नहीं। रावण तो कन्फ्यूज हो गया, बोले मेरे नीति विधि से फेल। अरे कोई सोल्जर होते कोई ट्रेनिंग होते उनको दिखाते ग्रीन सिग्नल रेड सिग्नल ये अभी यहाँ साटक है, वो उनके लिए कुछ नहीं, उनको कौन सा सोचना समझ कुछ है, सीधा दांत दिखाए वो हाँ करके दौड़ कर आए, अरे पत्थर उठा फेंके। विजय मारता है पत्थर फेंके, पत्थर फेंक फेंक करके मार मुर दी उनको। हाँ एक बार तो रावण आया, जब सुना कि हनुमान ने इतने भयानक, तो हनुमान के ऊपर क्रोध तो तभी से था जब से जला कर गया लंका, बोला मेरे सिटी को जला दिया ऐसे कर इतने गुस्सा तो था, पहले से भेज रहा था, एक तो उनका जो अशोक कानन था अशोक वाटिका उसको भी जला दिया, उसके सारे तोड़ ताड़ करके उनका इतने बढ़िया सा पार्क था उसको भी तोड़ डाला, सारे सिक्योरिटी को मरवा दिया, उनके कई बेटों को मरवा दिया, कई बेटों को मर्डर कर दिया, उसे गुस्सा तो पहले से था उसका। तो महीना दिन तक लड़ाई चला, रावण नहीं आ रहा था, अंत से जब देखा कि वो समर मार गया उनको ही जाना ही पड़ेगा, तो रावण जब आया सबसे पहले कि हनुमान को डिफीट करूं, बाकी उनसे लड़ेंगे उनसे क्या, ये सबसे बड़ा भयानक है। तो हनुमान के सामने आ गया, हनुमान जी के सामने आए, हनुमान भी उनको देखे, बोला मैं भी सोच रहा था मैं भी थोड़ा आपको देख लूं, बोला मैं भी आपको ही सोच करके आया, दोनों की प्लानिंग पक्का है, बोला कौन किससे लड़ेगा, तो बोले तुम आगे मारो ना मैं क्यों मारू, तुम पहले मार, है ना, नहीं दोनों कैप्टन सब सामना सामने हो गए, कौन किसको मारे। तो एक दोनों तैयार हुए, बोले तुम मारो मुझे तुम मार, बोले तो दोनों अस्त्र शस्त्र नहीं चलाते हैं, क्योंकि रावण भी देखा कि वानर तो अस्त्र नहीं चलाता, तो मैं उनके साथ ने किया है। तो रावण को सबसे पहले देखो मैं राजा हूं तो मेरा आदेश कम से तू लड़ना, तू पहले मुझे मार। तो हनुमान जी ने पहले मारे रावण को, एक मुक्का मारे वो सात चक्कर खाया, सात चक्कर खा करके गिर पड़ा मूर्छित होकर के, मिट्टी को मुंह में देकर गिर पड़ा, पड़ करके थोड़ी देर में आधा घंटा फिर उठा, हनुमान जी देख रहे थे, देख करके हताश हो गया, हताश हो गए, बोले क्या, बोले ठीक है मुझे, बोला अरे मुझे, मैं पूरे ब्रह्मांड में सारे देवता से लेकर के पाताल तक कोई मेरे सामने नहीं कर, तू मुझे इसे हाल कर दिया, तुम्हें शर्म लगता ना, मुझे इसलिए शर्म लगता है, मैं मारा तुम्हें फिर उठ गया, मरा नहीं, ठीक है मेरा तो मर जाना चाहिए था। वही मुझे देखता है कि मैं फेल हो गया, तू ही मार मैं देखता हूं, तो रावण भी मारा, हनुमान जी के चक्कर आ गया था। तो इसे कोई किसी कम योद्धा नहीं थे, लेकिन फिर जो हनुमान दूसरे उठाकर मान लो रावण भाग गया, बोला रे बाप रे बाप लड़ाई डर के मेरे भाग गया। तो ऐसे शक्तिशाली थे ये वानरों के अंदर, इतने शक्ति इतने प्रकार के प्रभाव, ये केवल भगवान राम की कृपा है। इसको सुखदेव गोस्वामी श्लोक में कहते हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं था, जो इतने इतने बड़े बड़े पर्वत अभी उनको छिला भी नहीं गया था, मतलब कोई काम करने के पहले उनको ड्रेसिंग करना पड़ता ना, यूज करने के लिए पहले ड्रेसिंग करना पड़ता है, बोले पर्वत वाज नॉट ड्रेस प्रॉपरली, क्योंकि वो पेड़ फेड़ उखाड़े नहीं थे, साइज भी नहीं क्या था, अब कोई पत्थर लाते हैं घर में काम में लगाने के लिए तो पहले पत्थर को काट कूट के साइज करते हैं तब जाकर काम लगते, बोले ब्रिज में लगेगा, अरे साइज करके लगाना चाहिए था ब्रिज, कोई गड़बड़ हो जाए, कोई गड़बड़ फड़बड़ नहीं, पेड़ को ही नहीं उखाड़े, पेड़ के साथ पर्वत को लेकर डाले, लेकिन केवल भगवान की शरणागति था, भगवान के नाम के प्रभाव था, भगवान के लिए था, तो आपने आप ऐसे फिटिंग हो रहे थे, ऐसे भी फिटिंग हो रहे थे कि समुद्र के ऊपर ब्रिज ऐसे बन गया। समुद्र के ऊपर ब्रिज बना बोलते आद्रि भृंग, वो पेड़ों के सहित बिना इनको बोलते हैं कि कोई चीज को काम में लाने के लिए उसे प्रोसेसिंग, वो अनप्रोसेस्ड स्टोन वो सब काम में लगा, इसी को तो बोला जाएगा। और क्या पर्वत को है पेड़ फेड़ उखाड़ा, थोड़ा साइज करो, साइज करके कौन सा फिटिंग है, कितना नाप ले करके, कोई नाप से कुछ नहीं, सीधा लाए ऊपर से डाले दूम, सीधा लाए उधर से डाले दूम, लेकिन वो सब ऐसे भी फिटिंग हो रहा था, नल नील ऐसे कहते कि बिल्कुल ये जो ब्रिज था 5 दिन में बना, कोई तरह से जब बड़े बड़े विशेषज्ञ जब जाकर सोचते हैं तो इतने वेल मैनेज्ड था, बिल्कुल सही से था, कैसे पत्थर को पत्थर लगाने से वो इतने स्ट्रांग होकर के रहेंगे, वो बिल्कुल ना तो कोई सीमेंट था उसमें, ना चूना था, कुछ भी नहीं था। हम लोग तो बिना सीमेंट के, बिना चूना में, बिना और उसके अंदर सरिया वगैरह डालने बिना तो कुछ कर ही नहीं सकते, कुछ भी नहीं था, वेल्डिंग मशीन था नहीं, लोहे पे कुछ भी नहीं था, सीधा रॉ मटेरियल्स डालते थे पहाड़ और आजेटिस डाल देते थे, और इसी में ऐसे भी फिटिंग ब्रिज बनता था। ये सबसे पहले लाइन में अति अद्भुत वर्णन यही हुआ, पेड़ों के साहित अनप्रोसेस्ड पर्वत स्टोन विविध आद्रि कूटे, विविध आद्रि, विविध आद्रि का कहने का मतलब कोई वेल एक साइज के नहीं होते, आप ईंट में घर बनाते हैं सारे ईंट का साइज लेंथ एंड ब्रेंथ सेम होता है ना, नहीं तब तो साइज में दीवार बनेगा, जब एक ईंट तिरछा होगा, एक ईंट चौकना होगा, एक ईंट गोल होगा, इसे कोई ब्रिज बन सकता, कोई दीवार बन सकता, कुछ ही काम नहीं हो सकता। राजमिस्त्री फेंक दे बोले नहीं साइज करके लाओ, एक तरह साइज बोले, ये कोई सा विविध आद्रि कूटे अनेक अनेक पर्वत, क्या पता के काला कोई पीला कोई सफेद कोई चौड़ा कोई फ्लाट कोई किसी प्रकार का कोई भरोसा नहीं था, विविध प्रकार के साइज वाले, और उसमें पेड़ पौधा ऐसे ही थे, जीव जंतु भी ऐसे होंगे उस पर लाकर डाल दिए होंगे कोई उनको साफ सुफ करना प्रोसेसिंग करना, थोड़ा साइज करो भाई ब्रिज काम में लगेगा, कुछ नहीं सीधा लाकर डाले। विविध प्रकार के नाना वर्ण के नाना प्रकार के नाना प्रकार के साइज बिल्कुल अनप्रोसेस्ड ला करके समुद्र में डाले, लेकिन भगवत शक्ति के कारण सब वेल मैनेज्ड ब्रिज बन गए परफेक्ट। और सेतु कपिंद्र करकंपित भूरंगी बोले, कपिंद्र बड़े बड़े बानर लोग इतने शक्तिशाली हो गए, इतने शक्तिशाली हो गए कि ऐसे ही लाकर डाल करके ब्रिज बना डाले। और सिग्रीव नील हनुमत प्रमुख है, और उनमें से जो बानरों में जो प्रमुख गण थे, वही प्रमुख गण के अंदर जो दूसरे और भी बानर सैनिक सब थे, वो बानर सैनिक चले, मतलब ये कहने के देखा जो सुग्रीव नील और हनुमत आदि, वो लोग भी कोई ऐसे हाईली एजुकेटेड थे नहीं। सुग्रीव जो पहले बार किष्किंधा कांड में वर्णन आता है, भगवान से उनका मित्रता हुआ, मित्रता होने के बाद में एग्रीमेंट साइन हुआ, प्रोजेक्ट पेपर फाइनल हुआ, एग्रीमेंट साइन हुआ, बोला देखो तुम्हारा डर करके ऋषि मुख पर्वत तो बैठा हूँ कि भाई मुझे मारने के लिए बैठा है, इसलिए डर के मारे में नहीं जाता हूँ, यहाँ उनके लिए अभिशाप है इसलिए नहीं आएगा, मैं इसलिए यहीं बैठा हूँ, बाहर नहीं जाता हूँ, तो अगर मुझे मित्रता कर ले मेरा काम कर देना, क्या मेरे भाई को मरवा दें, मर दूंगा। भगवान का एग्रीमेंट वही हुआ मित्रता के, उनके भाई को बद्ध करने के लिए, मारने के लिए के, बोले कोई बात नहीं जाओ, मैं तो भाई को देखा नहीं पहचानता नहीं ना, मेरे जिसे लगता है फोटो तो था नहीं, बोले कोई बात नहीं आप ऐसा करो उनको लड़ाई के लिए चैलेंज करो, जैसे आगे लड़ेंगे मैं खड़ा रहूंगा, अभी जिसे मार दूंगा। तो भाई सारे प्लानिंग हुआ, सारे प्लान मास्टर प्लान होकर के एक्शन होने के लिए जब गया, सुग्रीव ने जाके चैलेंज किया भगवान राम की भरोसा पर, उनके भरोसे में जाके चैलेंज किया, चैलेंज किया तो वाली निकला, बोला बदमाश डर के मारे सालों से छिप कर बैठा था ऋषिमुख पर्वत में, अभी आ गया, अभी देखता हूँ तुझे। उनके पत्नी मना कर रहे थे, भाई मत जाओ इसे आ रहा है, मतलब कोई उनका पीछे तो रहस्य होगा। अरे कुछ नहीं, एक थप्पड़ में उसको ये कर दूंगा। दौड़ कर आया, आ करके वो आ गया, वो तो भगवान राम के पावर से बड़े आंकड़े कर रहा था, वो भी सुग्रीव को शक्तिशाली तो था, ऐसा नहीं था। लग गए दोनों का द्वंद्व, युद्ध हुआ, महायुद्ध हुआ, युद्ध हुआ, बड़े तो तान तोड़ दिखा रहा था सुग्रीव, लेकिन बाली के शक्ति के सामने बाली मार करके दांत सब ढीला हो गया उनका, ऐसे मारा मुंह पीठ, वो देख रहा था भगवान राम कहाँ गए, मारते क्यों नहीं है। सारे सब तोड़ ताड़ करके फीट करके स्वेलिंग सब हो करके हाल खराब हो गया, भगवान मार नहीं रहे, ऐसे हाल हुआ। अब पिशाब आदि करके दौड़ा, चित्कार करके मर ही जाऊंगा, अब तो बचूंगा क्या, तो मारेंगे नहीं, मैं ही मर जाऊंगा आज भाई से। भागा दौड़ कर गांव गांव चित्कार करके दौड़ कर आया, भाग कर आया के रूप में भगवान राम को बोला, हाँ तुम नहीं मरवा देते यार, आपके भरोसे पर अग्रीमेंट साइन किया सब, ये क्या करिए, अरे पहले बार में हमारे साथ, ये मैं कैसे विश्वास करूं। भगवान राम बोले, नहीं मित्र, मैं ऐसा नहीं किया था, मैं तो तैयार था मारने के लिए, तैयार था, मैं मर ही रहा था, देख नहीं रहे थे, मैं देख रहा था, लेकिन आप दोनों देखने में इतने हू बहु समान में, मैं बाण तो बिल्कुल गन पॉइंट पर आया था, लेकिन लग रहा था कोई कौन सुग्रीव है दिखा नहीं पड़ रहा था, दोनों बिल्कुल सिमिलर फिगर था। नारे सिमिलर होते होते मैं तो मिलर हो जाता, मैं मर जाता, बोला मैं तो इसलिए देख रहा था, मैं अगर मेरा बाण आपसे लग जाता ना, राम राम बाण भी लग जाता ना, इसीलिए तो बाण नहीं मारा था। हाँ पहले दिन बिल्कुल ऐसे हाल करके लाए, बोले दोबारा दोबारा कभी नहीं जाऊंगा, हम क्या भरोसा। अभी 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 हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा, इतने सारे हाल करके दोबारा जाऊंगा ना, इस बार मैं बताता हूँ, सुनो सही, भगवान ने फिर माला पहना है, आपने प्रसादी माला दिए बनाकर, बोले तुम गड़बड़ी प्रसादी माला नहीं लिया था, चला गया। देखिए भगवान प्रसाद के बिना, भगवान के भरोसे में, तब भी भगवत कृपा से थोड़ा सा ढीला हो गया, कुछ परसेंट, माला नहीं पहना तो भगवान की कृपा धारण नहीं किया था, अभी मर मर करके आया धर्मरा होकर के, लेकिन आज माला पहन कर गया। ओ धर्मरा शरीर में, मतलब काल इसी प्रकार का मार खाया था, अब 80% डैमेज हो चुका था उसका शरीर का, डैमेज्ड 80% डैमेज्ड बॉडी में गया माला पहन करके, लेकिन आज टिक नहीं पाया, आते ही बाण गया, राम बाण जा करके बाली को नाश कर दिया, बाली मर गया। बोले माला पहना तो बोले थे वो माला नहीं है, बिना माला में और आप माला के साथ था, ऐसे तो उनके भाई को बद्ध करके तो इतने खुश हो गया सुग्रीव, इतने खुश हो गया, बोला हैंडशेक किया, बोला आप तो आप जो चाहे आपके लिए सब कुछ मैं करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। भगवान बोले देखो अभी चतुर्मास आ गया है, अब मैं तो चतुर्मास में भाई हम सन्यासी वनवासी है, अब वनवासी जो योगी लोग होते हैं बारिश में कोई जाता नहीं, अब ऐसे ही बारिश में दुनिया प्रकार के, तो बारिश 4 महीने ही रुक जाते ना, बढ़िया मैं भी 4 महीने थोड़ा आराम कर लेता हूँ, तो 4 महीने छुट्टी दिए, तो गया घर में, जाकर भूल ही गया जो प्रोजेक्ट हाथ में लिया था, भूल गया था। भगवान देखते कार्तिक महीना होने वाला, भाई क्या है उसका, कोई आता नहीं, मीटिंग वीटिंग भी नहीं है, कोई मीटिंग अटेंड नहीं करता, घर में ऐश में जाकर था, इंद्रिय सुख में लक्ष्मण को भेजे, लक्ष्मण जाकर बोला ऐसे जाकर के तान तोड़ देखा, डांटा, तब फिर जाकर के आया। तो इस प्रकार भूल जाते हैं भगवान के शक्ति प्राप्त करके, सहायता लेकर सब तो भूल जाते हैं, तो हमेशा भगवान के स्मरण रहना चाहिए, भगवान के साथ चाहिए, भगवान की कृपा चाहिए, तब ऐसे अद्भुत कर्मणा ऐसे आश्चर्य कर सकते हैं, ऐसे का आश्चर्य क्या सकता है। तो भगवान शक्ति के प्रभाव इस श्लोक में दिखाते हैं कि रावण जैसे महाशक्तिशाली के सामने साधारण वानर सेना को लेकर किस प्रकार विजय प्राप्त किए, किस प्रकार समुद्र में बांधे किस प्रकार काम किए, ये भगवान राम की अपनी प्रभुता है, अपनी शक्ति है। भगवान राम आज तक भी ऐसा नहीं, भागवत जब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं तभी परीक्षित महाराज को बोले, हे राजा मैं अभी आपको भागवत कह रहा हूं, भागवत मैं अभी आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं मैं बोल रहा हूं, लेकिन ये निश्चित रूप से मैं सही कह रहा हूं कि रामायण तो आप कितने कितने बार सुन चुके होंगे, कई लोगों से मतलब सो वेल पॉपुलर, कितने पहले से कितने बार सुन चुके होंगे रामायण के बाद, और रामायण इतने प्रसिद्धि है कि भारतवर्ष में कहीं गली गली में जाओ, कहीं भी जाओ, बच्चे बच्चे में भी राम राम बोलने से समझ लेंगे, ये राम शब्द का इतने वेल वाइड स्प्रेड है, उनके राम शब्द का अलग अलग प्रकार से उच्चारण करने से भी अलग अलग इफेक्ट होता है ना, नहीं केवल सिंगल एक राम, सिंगल एक राम उच्चारण करने से कोई संबोधन समझेगा, कोई बुला रहा है राम, कोई है क्या राम को बुला रहा है, या कोई अद्भुत कर्म हे राम, कोई आश्चर्य देखने से हे राम होता है, इस प्रकार के अर्थ में लिया जाएगा। राम राम दो शब्द दो बार बोल देने से ग्रीटिंग्स, भैया राम राम, केवल एक शब्द से संबोधनार्थ या अद्भुत कारण में दो बार बोलने से ग्रीटिंग्स वेलकम, ग्रीटिंग्स कहेंगे राम राम, तीन बार करने से घृणा, राम 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 बताओ तीन बार में कोई चीज को घृणा करना है तो तीन बार राम राम बोलते और चार बार राम राम बोलेंगे तो बोले जप कर रहा है चार बार या उसे अधिक करो बोले जप कर रहा राम राम। तो ऐसे राम शब्द का ही ऐसे उपयोगिता कैसे समाज में भरे हुए मुझे तो एक व्यक्ति बता रहे थे, बोले राम 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 से किंग ग्रीटिंग करेंगे मालूम है, राम राम से किसी को बोलने से राम राम अभ्यास आप करते हैं कि रा और म हमारे जो वर्णमाला के अनुसार में र शब्द और आ शब्द और म शब्द को तीनों मिलाएंगे उनका अक्षर पोजिशन के अनुसार वो होगा 54 प्लस 54 108, तो राम राम 54 प्लस 54 108 एक माला कंप्लीट हो जाएगा। आप एक माला करते हैं 8 मिनट लगाते हैं, राम राम बोल दो एक माला हो जाता है, 108 हो जाता है। हाँ इसीलिए राम राम रखो, बिल्कुल हिसाब के साथ है तो इस प्रकार साइंटिफिक वर्ड है राम 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 शब्द, तो इसलिए किसी भी प्रकार से अज्ञात सार में भी कोई राम राम कर ले तो उनका भी काम हो जाए, और जान करके संपूर्ण रूप से समागत हो जाए तो पूरे वानर भालू जब इस प्रकार कामयाब हो गए तो हम तो मनुष्य है ही, कम से कम उनसे तो थोड़े बहुत है, उनसे तो प्रभु तो है ही नहीं लेकिन फिर भी मनुष्य शरीर तो है, तो हम अगर शरण में ले ले तो क्यों नहीं अद्भुत कर्मा किया जा सकता, अवश्य हो सकता है। यही सुखदेव गोस्वामी शिक्षा देते हैं कि भगवान के भरोसा और भगवान के समर्पित होकर के कोई किया जाए तो कोई अचरज नहीं है, कोई आश्चर्य नहीं रह जाता, सब कुछ असंभव संभव हो सकता है। जय श्री राम। कोई क्वेश्चन बाद से बनो,
हम से भगवान राम से जानते हैं कि जब भगवान अंधकार में ऋषि मुनि लोग गए थे भगवान राम को देख के वो आकर्षित हो गए थे, तो भगवान राम ने कहा था कि मैं इस जन्म में तो आपको नहीं अपनाऊंगा लेकिन अगले अवतार में अपनाऊंगा, तो भगवान राम क्या पूर्ण भगवान है, क्या भगवान राम क्या उनको कृष्ण भी उनके अंदर है, भगवान राम के अंदर कृष्ण भी है क्या, तो इसके विषय में जानना चाहता हूँ।
कृष्ण उनके अंदर नहीं, कृष्ण के अंदर राम है ना, तो राम ही कृष्ण है, राम ही कृष्ण है, समझे नहीं?
नहीं नहीं है
समझ। अरे अब कैसे बताऊं, अब शरबत जो बनाता है पानी में चीनी डाला नींबू डाला तो शरबत के अंदर बोलूंगा चीनी है शरबत में, समझ में आता ना? हाँ तो वैसे ही, तो कृष्ण में राम ही है, राम में कृष्ण ही है,
भगवान
कृष्ण का एक नाम राम भी है। आप जिसके लिए लेंगे चलेगा, बलराम के लिए भी चलेगा, राम के लिए भी चलेगा, परशुराम के लिए चलेगा, कृष्ण के लिए भी चलेगा, शास्त्र में सभी दिया गया, तीनों दिया गया शास्त्र के अनुसार, तो राम शब्द कृष्ण के लिए ही है, रमयति इति राम राधा रमण रुक्मिणी रमण, तो वो भी कृष्ण है, वो राम भी है, सीता रमण वो भी राम है, बलराम वो भी राम है, परशुराम वो भी राम है, तो भगवान के नाम है, सभी भगवान तो बता रहे। और कुछ ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की समेत भक्तवृंद की।